जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन व्रज जन रंजन, जय यशोदा नंदन व्रज जन रंजन, जामुन तीरावन जामुन तीरावन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी, जय यशोदा नंदन व्रज जन रंजन, जय यशोदा नंदन व्रज जन रंजन, जय यशोदा नंदन व्रज जन रंजन, जामुन तीरावन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे, जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे, जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय 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 जय 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 प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्री राधा गिरधारी जी की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। शिष्य गौर निताय की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। गौर हरि प्रेम मंत्री ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रतं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त नमस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। साकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत नवम स्कंद अध्याय 14 श्लोक संख्या 3। अध्याय आज ही प्रारंभ हो रहा है ना, ये दो श्लोक में कोई तात्पर्य नहीं है प्रभुपाद जी का, तो पढ़ेंगे सब श्लोक। श्री शुक उवाच अथातः श्रूयताम् राजन् वंशः सोमस्य पावनः यस्मिन् ऐलादयो भूपः कीर्त्यन्ते पुण्यकीर्तयः सहस्रशिरसः पुंसो नाभिहृदसरोरुहात् जातस्यासिद्धातु जातस्यासिद्धातुरात्री पितृसमो गुणै। आपके सामने लिखा है वो श्लोक है। तस्य दृग्यः अभवत् पुत्रः सोमः अमृतमयः किल विप्र औषधि उद्गणानां ब्रह्मणा कल्पितः पति। तस्य दृग्भ्यो भवत्पुत्रः सोमोऽमृतमयः किलः विप्रौषध्युडुगणानां विप्रौषध्युडुगणानां। एक साथ बोलने में तकलीफ हो तो अलग अलग भी बोल सकते हैं। विप्र औषधि और उडुगणाना, ठीक है। और मुझे खुद अटपटा एक साथ बोलने में लग रहा है, आप भी इसको अलग कर सकते हैं। विप्र औषधि और उडुगणाना। विप्र औषधि उडुगणानाम ब्रह्मणा कल्पितः पतिः तस्य दृग्भ्यो भवत्पुत्रः सोमोऽमृतमयः किलः विप्रौषधि उडुगणानां ब्रह्मणा कल्पितः पतिः तस्य दृग्भ्यो भवत्पुत्रः सोमो अमृतमयः किलः विप्रौषधि उडुगणनाम् ब्रह्मणा कल्पितः पतिः से अभवत् हुआ पुत्र पुत्र सोमः चंद्रमा अमृतमयः स्निग्ध किरणों से युक्त किल निसंदेह विप्र ब्राह्मणों का औषधि दवाओं का उद्गणानाम तारों का ब्रह्मणा ब्रह्मा द्वारा कल्पितः नियुक्त किया गया पति निर्देशक अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद अनुवाद अत्रि के हर्ष अश्रुओं से सोम नाम का पुत्र हुआ जो स्निग्ध किरणों से युक्त था। ब्रह्मा जी ने उसे ब्राह्मणों औषधियों और नक्षत्रों का निर्देशक नियुक्त किया। तात्पर्य वेदों के अनुसार सोम या चंद्रदेव की उत्पत्ति भगवान के मन से हुई है। चंद्रमा मनसो जातः, किंतु यहाँ पर सोम को अत्रि के अश्रुओं से उत्पन्न बतलाया गया है। यह वैदिक सूचना के विपरीत प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि चंद्रमा का जन्म किसी दूसरे कल्प में हुआ जान पड़ता है। जब आंखों में हर्ष के मारे अश्रु आते हैं तो वे स्निग्ध होते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, दृग्भ्य आनंदाश्रुभ्य बत एव अमृतमय। यहाँ दृग्भ्य शब्द का अर्थ है आनंद के अश्रुओं से, इसलिए चंद्रमा अमृतमय कहलाता है। अर्थात वह स्निग्ध किरणों से युक्त होता है। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंध 4.1.15 में यह श्लोक आया है, अत्रेह पत्नी अनुसूया त्रिन जग्ये सुयशसुतान दत्तम दुर्वास समसोमम आत्मेश ब्रह्म संभवान। इस श्लोक से पता चलता है कि अत्रि पत्नी अनुसूया के गर्भ से तीन पुत्र उत्पन्न हुए, सोम दुर्वासा और दत्तात्रेय। ऐसा कहा जाता है कि अत्रि के अश्रुओं से अनुसूया गर्भवती हुई। परम मनोहर भगवान की कृपा से प्रत्येक दिवस की भांति हम लोग श्रीमद् भागवत कथा सत्र में बैठे हैं। महावदान्य परम कृपालु गौरनिताय श्रील प्रभुपाद जी के चरण में वास्तव में महावदान्य है, और सबके लिए तो किवाड़ है, पर्दा है, बंद हो जाते हैं कुछ समय लिए, लेकिन गौरताई अभी भी भागवत कथा श्रवण के लिए बिल्कुल उपस्थित है हम लोगों के साथ। महावदान्यता है, भक्त रूप में आए हैं, भगवान के भक्ति रस, स्वयं अपने ही भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए, तो यह बात चरितार्थ हो रही है। और सब लोग तो भगवान हैं इसलिए कपाट में बंद है, लेकिन ये भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए, प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के में आए हैं। इसलिए भक्तों के साथ नित्य कृपा वर्षाना, अपना संग देना, अपना अनुग्रह रखना, ये महाप्रभु की कृपा है। राधा कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु हैं। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहे अन्य। राधा और कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में है, परंतु राधा रानी और कृष्ण दोनों अलग हो करके इतने कृपालु नहीं होते जितना एक साथ होकर के महाप्रभु है। हम लोग कहते हैं हे कृष्ण करुणा सिंधु, आप करुणा सिंधु है, परंतु महाप्रभु के रूप में जितनी करुणा है, जितना रस आस्वादन है, जितना रस वर्षण है, रस की वर्षा करते हैं, उतना अन्य अवतारों में नहीं किया। और ये बात मैं नहीं कहता हूँ, अनर्पित चरिम चिरात करुणया वतीर्ण कलव। बहुत जन्मों से, बहुत अवतारों में भगवान ने जिस तत्व को, अपने प्रेम रस का वितरण नहीं किया था, उसको देने के लिए महाप्रभु के रूप में पधारे। अनर्पित, अनअर्पित था जो, नहीं अर्पित किया था जीवों को, तो देने के लिए और आस्वादन करने के लिए। भक्तों के भक्ति में इतना सुख है, कितना आनंद आता है, भगवान इस सुख का, इस सुख का आस्वादन करने के लिए प्रकट होते हैं। तो महावदान्य अवतार है, नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं सुना था एक जगह राधा रानी और कृष्ण दोनों रस स्वरूप हैं। उपनिषद कहता है रसो वही सह, लेकिन ये दोनों रस लेते हैं। लेकिन वही दोनों रस एक रस जब हो गए तो रस लिया भी और साथ दिया भी, सबको दिया। पाषाण तक पत्थर भी महाप्रभु के कृष्ण प्रेम के कारण पिघल गए। जानवर भी, आप जानते हैं झारखंड के जंगल में नैसर्गिक जन्मजात आपस में वैर था जिन पशुओं में, वो जानवर भी ये गले से गले मिल करके और इस तरह से एक साथ नृत्य करने लगे। हाथी और खरगोश एक साथ मिल करके दोनों प्रेम अश्रु बहाते हुए कृष्ण प्रेम में सराबोर। महाप्रभु की ऐसी कृपा जानवरों पर भी पशुओं पर भी कृपा की। ऐसा कोई अवतार हुआ नहीं हुआ। एक आचार्य ने कहा है, ऐसे मैं सुना था ऐसे अपने मंदिर में प्रवचन के क्रम में, कि खीर, खीर समझते हैं ना, स्वीट राइस, खीर में क्या होता है बंधु? दूध होता है, शक्कर होता है और चावल होता है, तीन चीज होता है। तो आप चावल बना करके हैं, भात बना करके खा लीजिए, शक्कर खा लीजिए और दूध पी लीजिए, और एक तीन दूसरा आइटम तीनों को एक साथ करके और स्वीट राइस बना लीजिए। चीज वही है लेकिन स्वाद होगा अंतर? नहीं अनुभव हो तो खा खा के अलग अलग देखना। वही अंतर है श्री चैतन्य महाप्रभु में, स्वीट राइस है भक्तों के लिए। सब चीज वही है परंतु भक्तों के लिए और भक्ति के लिए परम मधुर अवतार। ऐसा अवतार जैसा अवतार बहुत समय के बाद हुआ। प्रत्येक कलियुग में चैतन्य महाप्रभु का अवतार नहीं होता है। महाप्रभु का अवतार ब्रह्मा जी के एक दिन में केवल एक बार होता है, और ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है? सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदु। ये सत्य युग, द्वापर, त्रेता और कलयुग जब 1000 बार राउंड लेता है, तब 1000 बार राउंड के क्रम में महाप्रभु का एक बार अवतार होता है, और वह भी वैवस्वत मनु के राजशासन काल में, और वह भी 28वें चतुर्युगी के कली के प्रथम चरण में महाप्रभु आते हैं। तो हम लोगों का कितना बड़ा सौभाग्य है, हमारे बाप या दादा के दादा उनका दर्शन किए होंगे या उस समय होंगे इस पृथ्वी पर। बहुत लंबा समय नहीं हुआ महाप्रभु को आए। तो लेटेस्ट अवतार है, महावदान्य अवतार है, और हम भी बिल्कुल महाप्रभु के हैं। ऐसी कृपा है कि हम भी उनके साथ हो गए। उन्होंने कृपा करके अपने चरणों में रखा है। मुझे याद आ गई, सब बंद हो गए थे और ये साथ में, भक्तों के साथ में खड़े हैं। इस रस का स्वादन किया है। 12 वर्ष तक कृष्ण प्रेम में, कृष्ण ने अपने ही प्रेम में अश्रु प्रवाहित करके कैसे कैसे रुदन किया, ये चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। ऐसे महाप्रभु के परिवार में उनके कृपा के छत्र छाया में हम सब लोग आ गए हैं, हैं? पता नहीं कैसा सौभाग्य श्रील प्रभुपाद जी के आश्रय उनकी कृपा से, तो अद्भुत कृपा है। मुझे याद आ जाता है एक भक्त का पद्य, उन्होंने लिखा है तेरे दरबार में महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं, तेरे दरबार में मुझसे न जाने आ गए कैसे, परम धन प्रेम संपत का खजाना पा गए कैसे। आप जिस प्रेम संपत्ति का खजाना लुटाने आए थे, पता नहीं किस भाग्य से हम आपके साथ आ गए। तो भाग्य नहीं था, परंतु करुणा मन करुणा, पात्र अपात्र का विचार महाप्रभु नहीं करते, और सब अवतार करता है, ये योग्य है कि नहीं, साधना है कि नहीं, ये नहीं है, पात्र अपात्र विचार नाम न कुरुते, कोई पात्र अपात्र का विचार नहीं है। जो भी सामने आया उसको सीधा कृष्ण प्रेम देते, चाहे वो यवन हो, चाहे पशु हो, चाहे जानवर हो, किया उद्धार जवनों का फिर टेढ़ी क्यों नजर हम पर। भक्त प्रार्थना करता है आपने अपने कृपा कोर से अनंत जीवों का उद्धार किया तो मुझे क्यों नहीं करते, मुझ पर टेढ़ी नजर क्यों है, मैं भी कृपा के लायक हूँ, आपकी शरण में हूँ, इसलिए कृपा कीजिए, ऐसी प्रार्थना है भक्तों की। श्रीमद् भागवत सत्र के क्रम में महाराज परीक्षित बहुत प्रसन्न है, ऐसे वंश का वर्णन सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ करते हैं जिस वंश में स्वयं भगवान इस वंश को अलंकृत करेंगे। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अथात श्रूयताम राजन, इसके पहले सोम वंश का वर्णन, महाराज निमि के वंश का वर्णन आप सब लोगों ने सुना पढ़ा होगा, बहुत पवित्र वंश, जिस वंश में जनक नंदिनी विदेह राज वैदेही के पिता महाराज जनक हुए, और गृहस्थ जीवन के आचार्य हैं, गृहस्थ जीवन में रह करके भी किस तरह से विरक्त रहना चाहिए, इसके बहुत बड़े आचार्य है जनक महाराज। और कहीं कहीं तो शास्त्रों में यहाँ भी आता है, इतना तक आता है कि सुखदेव गोस्वामी जब सारा शास्त्र का अध्ययन किए तो उसके बाद भी मुनि हो गए कि नहीं हो गए इसकी परीक्षा बिहार में हुई। महाराज जनक के दरबार में गए और वहां पर अनेक युवतियों के बीच में हैं, जिसके बीच में महाराज जनक रहते थे, राजा के बीच में सन्यासी का रोल चैतन्य महाप्रभु ने किया तो राजा नाम भी नहीं सुनना चाहते थे कि धनी है तो रजोगुणी होगा, और हम साधु है सन्यासी है इसलिए रजोगुणी लोगों का दर्शन भी नहीं करना है, मिलने की बात तो दूर है। ऐसे सुखदेव गोस्वामी की जब परीक्षा लेने की बात आई तो जनक महाराज के पास गए थे, वहां पर उनको सर्टिफिकेट मिला कि अब आप मुनि हैं, आप ब्रह्मचारी हैं विरक्त। किसके यहाँ सर्टिफिकेट मिला? एक गृहस्थ के यहाँ, जनक महाराज गृहस्थ है, अपने घर गृहस्थी में है, एक राजा है, परंतु राजा राज्य में रहते हुए भी जनक जी राज्य में है लेकिन राज्य जनक के हृदय में नहीं है, हृदय में राज्य न रहे तो कहीं भी साम्राज्य आपका होगा। मैं सुन रहा था, लोग कथा में बैठते हैं लेकिन कथा उनमें बैठ जाए तो और अच्छी बात है ना। कथा में तो हम बैठते हैं लेकिन मन इधर उधर न जाए, कथा हम में बैठ जाए तो और सुंदर बात है। तो ऐसे सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कहते हैं, अथ हे राजन श्रूयताम, सुनो सुनो। सब कुछ छोड़ करके महाराज परीक्षित बैठे हैं श्रवण करने के लिए। सारे विश्व ब्रह्मांड का सम्राट पद परित्याग किया, ताज दे दिया अपने पुत्र को, और ऐसा नहीं दिया कि जैसे हम लोग कभी कभी छोड़कर वृंदावन जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो मोबाइल साथ में होता है, ऐसे गए कि फिर कोई पीछे नहीं मुड़ा, पीछे मुड़कर नहीं देखेगी पुत्रों का क्या होगा, राज्य का क्या होगा। 7 दिन के बाद मृत्यु है तो ऐसे परीक्षित महाराज को कहते हैं श्रूयताम, सुनो। अब तक तो आपने सुना ध्यान से कथा का क्रम, कितना दिन है, 3 दिन 3 रात सुन गए हैं और 4th दिन में प्रवेश कर रहे हैं, और 4th दिन प्रवेश करने के 1-2 घंटे पहले की ये घटना है जब सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को यदुवंश का वर्णन सुना रहे हैं। तो बीच बीच में कहा करते हैं श्रूयताम राजन, हे महाराज। राजा नहीं है महाराज परीक्षित, लेकिन राजन शब्द संबोधन इसलिए कर रहे हैं कि अब तो इसके पहले आप अन्न वस्त्र करके जनता का पालन करते थे, लेकिन वास्तविक राजा तो आप अभी छोड़ करके राजा हुए हैं, क्योंकि अब आप वो चीज दे रहे हैं जनता को, समाज को, संसार को, जिसके द्वारा शरीर का नहीं आत्मा का पालन होगा। और वो तत्व कौन है, श्रीमद् भागवत। इसलिए राजन शब्द कह रहे हैं, आप राज रहे हैं, विराज रहे हैं, वास्तव में सब राज्य छोड़ने के बाद भी कथा में बैठे हैं, यही आपकी सबसे सुंदर शोभा है, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। इसलिए राजा नहीं है, छोड़ दिया जिसको उसको भी महाराज बार सुखदेव गोस्वामी बार बार संबोधन करते हैं, राजन सुनो। अन्न जल त्याग किया है महाराज परीक्षित ने, उनको कहते हैं क्या सुनना है, बोले अब अथ अतः श्रूयताम राजन, अब तक तो आपने सूर्य वंश का वर्णन श्रवण किया, अब आप वंश सोमस्य पावन, सोम के चंद्रमा के पवित्र वंश का वर्णन सुनिए। सोम वंश कैसा है, सुखदेव जी कहते हैं पावन, पावन का, पावन का अर्थ होता है परम पवित्र है, और श्रूयताम इसलिए कह रहे हैं कि केवल इस वंश का वर्णन कोई सुन भर ले श्रूयताम तो वह व्यक्ति भी पवित्र हो जाएगा, इतना सुंदर केवल सुनने की मन। पावन का अर्थ होता है जो पवित्र कर दे, और क्या करने से पवित्र करेगा, बोले श्रुति मात्रेण, केवल श्रवण करने मात्र से ही, सोम वंश का वर्णन श्रवण करने से व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, क्योंकि यह परम पवित्र वंश है। जस्मिन ऐला दयो भूपहा, इस वंश में किसका वर्णन आएगा, तो कहते हैं कि ऐल आदि इला के पुत्र महाराज पुरुर्वा का वर्णन आएगा, और ये ऐसे ऐसे विचित्र राजा हुए, कीर्त्यन्ते पुण्य कीर्तय, पवित्र कीर्ति के द्वारा, पवित्र यश के द्वारा, जिनके कीर्ति का वर्णन है, ऐसे महाराज पूर्वा जिस वंश में प्रकट हुए उस वंश सोम वंश का वर्णन श्रवण करो। और वंशों के लिए श्रवण करने के लिए परीक्षित को प्रश्न करना पड़ता था, महाराज ये सुनने की इच्छा है, ये सुनने की इच्छा है, लेकिन इस वंश का वर्णन बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी प्रश्न के कर रहे हैं। बहुत पवित्र वंश है। आगे चल करके सुखदेव जी एक जगह कहते हैं कि जदुर वंश नरम श्रुत्वा सर्व पापई प्रमुच्यते। यह इतना पवित्र वंश है कि इस वंश का केवल वर्णन व्यक्ति सुन ले तो सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। सर्व पापई प्रमुच्यते, प्रकृष्ट रूपेण मुच्यते इति प्रमुच्यते। उसके जीवन पाप नहीं रह जाएगा, केवल यदुर्वंश नर श्रुत्वा, यदुवंश का वर्णन सुना और पाप मुक्त हो गए। पाप के कारण भगवान में मन नहीं लगता है, भजन में भी बहुत बड़ा बड़ा विक्षेप होता है, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इस वर्णन को सुनो, आप पवित्र हो जाओगे, सभी पाप मुक्त हो जाओगे। जस्मिन अयला दयो भूपा अयल इत्यादि महाराज पुरुरवा हुए। आगे उनके वंश का, उनकी लीलाओं का वर्णन सुखदेव जी ने किया है, किस तरह से अगले श्लोक में कहते हैं कि सहस्र शीरसा पुरुष गर्भोदक शाही विष्णु के नाभि कमल से नाभि हृद सरोरुहात, नाभि हृद के सरोर सरोरुह से कमल से एक पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम श्री ब्रह्मा जी। गर्भोदक शाही विष्णु, सृष्टि का क्रम जहां पर वर्णन है वहां विस्तार से वर्णन होता है कि एक ही पुरुष अपने को तीन पुरुष के रूप में प्रकट करता है, कारणोदकशाही, और उस कारणोदकशाही विष्णु अपने ही शरीर से दिव्य श्री विग्रह से जल प्रकट करते हैं, और जल प्रकट करके उसमें शयन करते हैं, और शयन करके जब एक सांस लेते हैं, एक सांस छोड़ते हैं, तो उनके सांस को छोड़ने से जल के ऊपर जो छोटी छोटी एक एक बुलबुला आता है, वह महाविष्णु के एक एक बुलबुला ही एक एक ब्रह्मांड बनता है। एक एक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है, परंतु ब्रह्मांड की सृष्टि होने के बाद भी वो ब्रह्मांड सक्रिय नहीं होता है। सारे तत्व उसमें भर दिए जाते हैं, तब भगवान उस ब्रह्मांड में एक महाविष्णु ही एक एक रूप से प्रत्येक ब्रह्मांड में जाते हैं, और उनको गर्भोदक शाही विष्णु कहते हैं। तो जगत की सृष्टि नहीं होती है, ब्रह्मांड तो बन जाता है लेकिन सृष्टि खाली होती है। अब कितना सृष्टि भगवान करेंगे, इसलिए अपने एक एक नाभि कमल से एक पुत्र पैदा करते हैं, प्रकट करते हैं। बड़ी अद्भुत, विश्व का सबसे बड़ा बुद्धिमान चतुर्वेदी पुत्र और शिष्य, भागवत का प्रथम श्लोक कहता है तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि, कवि का अर्थ क्या होता है, जो तीनों काल के भूत भविष्य वर्तमान त्रिकालज्ञ हो उसको कवि कहते हैं। कविम पुराणम अनुशासितारम गीता में कवि माने त्रिकाल की। तो बहुत बड़ा इंजीनियर राधा गोविंद महाराज कहते हैं, विश्व का सबसे बड़ा इंजीनियर, एक मकान बनाने में लोगों की है नानी मर जाती है, कितना बुद्धि, और वो भी केवल बुद्धि देते हैं, बनाता दूसरा है, और ब्रह्मा जी बुद्धि भी और बनाना भी और एक घर और मकान नहीं, एक ब्रह्मांड की सृष्टि करनी है। कहाँ पर मिट्टी होगा, कहाँ पत्थर होगा, कहाँ नदी होगा, कहाँ समुद्र होगा, किस वृक्ष होंगे, एक एक फूल कैसा होगा, उसका रंग कैसा होगा, उसका साइज कैसा होगा। आप देखते हैं ना, साइज पत्तियों का होता है एक जैसा होता है, फूल का कलर होता है उसका कलर कुछ और है, उसका एक स्वाद कुछ अलग है। एक एक वस्तु में अलग अलग रंग, अलग अलग डिजाइन, अलग अलग गंध, तरह सब चीज अलग। कभी कभी तो आप गांव देहात, इधर तो नहीं मिलते होंगे, गांव देहात में जाओगे, बरसात होते ही इतने किस्म के कीड़े निकलते हैं धरती से, हैं? किसी का मूंछ लंबा है तो किसी का पूंछ लंबा है तो किसी का मुंह लाल है तो किसी का पीला है तो काला है। वो देखकर यही लगता है कि क्या क्या खुराफात ये ब्रह्मा जी के मन में आया है। वही सब मिलकर 84 लाख बना है। 84 लाख कोई दूसरा नहीं है, केवल किसी का दांत थोड़ा आगे बना दिया, किसी का पीछे बनाया, किसी का मूंछ इधर बनाया, वही बन मिल करके 84 लाख हो जाए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, ऐसे ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए हैं। इसीलिए ब्रह्मा का एक नाम अज, कोई माता नहीं, अजन्मा कहते हैं ब्रह्मा जी को, ऐसे अजन्मा है ब्रह्मा जी, अज कहते हैं। ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र भी है, भगवान के शिष्य भी है। बहुत बड़े सर्वप्रथम वेद का ज्ञान भगवान ने विस्तारित किया। राधा गोविंद महाराज अपने प्रवचन में प्रायः कहा करते हैं, संसार में यदि पुत्र पैदा करना हो तो बिना स्त्री के सहयोग से पुत्र पैदा नहीं कर सकता। लेकिन भगवान को जब एक पुत्र पैदा करना हुआ तो लक्ष्मी बगल में चरण दबा रही थी और आज तक एक भी पुत्र पैदा नहीं किया। सुना आपने, लक्ष्मी का कोई पुत्र है? और पुत्र की इच्छा हुई तो जगत सृष्टि करता, जगत सृष्टा एक ऐसे पुत्र को प्रकट कर दिया, नाभि से कमल निकाला और उस पर एक बेटा, एक पुत्र पैदा प्रकट हुआ। और धर्मपत्नी बगल में निरंतर भगवान के चरणों की सेवा कर रही है। लक्ष्मी सहस्र सत संभ्रम सेव्यमानम, भगवान ने हृदय में स्थान दिया है लक्ष्मी को, क्योंकि लक्ष्मी ने सब कुछ छोड़ करके नारायण को वरण किया था। जीवन में नेता, इष्ट और आराध्य किसे चुनना चाहिए, ये लक्ष्मी इसके आदर्श। बहुत लोग देवता भी थे, ऋषि भी थे, चिरायु लोग भी थे, असुर भी थे, राक्षस थे, लेकिन सबका तिरस्कार किया और बरमाला लेकर के जब घूम रही थी तो सब लक्ष्मी की तरफ देख रहे थे, है ना? आज भी ये गाड़ी रोड पर चल रही है, ट्रेन चल रहा है, प्लेन चल रहा है, सब क्या चाहते हैं? लक्ष्मी को चाहते हैं। पैसा के लिए इतना भाग दौड़ हो रहा है। उस सभा में भी सब लक्ष्मी को चाहते थे, लेकिन लक्ष्मी ने किसी को नहीं चाहा। सब एक तक बिल्कुल निर्निमेष पलक से लक्ष्मी की तरफ देख रहे थे और लक्ष्मी ने जब सबको देखा और सबको रिजेक्ट कर दिया, क्रोधी है, क्रोध है तो काम पर, क्रोध नहीं है तो काम पर विजय प्राप्त नहीं किया, बहुत बड़ा तपस्वी है तो क्रोध नहीं गया है, किसी ने अपने इंद्रियों पर विजय नहीं प्राप्त किया तो क्या पति हो सकता है, और एक ही व्यक्ति उसमें था जिसमें कोई दोष नहीं था, लेकिन उसमें भी एक दोष दर्शन किया लक्ष्मी ने, और वो भगवान कृष्ण विष्णु। उन्होंने देखा ये पुरुष में एक भी दोष नहीं है, लेकिन इसमें एक ही दोष है कि सब लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, सब मुझको चाहते हैं, और इसमें कोई दोष नहीं है तो ये मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है। भगवान तो आत्मा राम है, उनको कोई बाह्य वस्तु मिलेगा तब प्रसन्न होंगे, ऐसी कोई आशा अपेक्षा नहीं है। उनके भीतर से ही आनंद निकलता है। हम लोग संसार की वस्तु संग्रह क्यों करते हैं? क्योंकि हमको उससे सुख मिलता है। भगवान के तो भीतर से ही आनंद तत्व ही है, तो भीतर से ही आनंद निकलता है। ब्रह्मा जी को पैदा किया, तस्य नाभि जातस्य आसीत धातु, विधाता का जन्म हुआ। और भगवान जब पैदा किए, प्रकट किए, तो माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चे को अच्छा संस्कार दे, शिक्षा दे, पढ़ाने लिखाने की व्यवस्था करे। तो पढ़ाया भी, कोई बहुत टेंशन नहीं लेना पड़ा। आजकल माता पिता जितना टेंशन लेते हैं, ये टिफिन तैयार करो, ये ड्रेस बनाओ, ये करो, पहुंचाओ, लेने जाओ, बहुत सारा झंझट है, तो कोई टेंशन नहीं। तेने ब्रह्म संकल्प मात्र से, तेने अर्थ होता है विस्तारित कर दिया, बाहर से कोई उपदेश नहीं, और इतना सुंदर ज्ञान विस्तारित किया कि मुह्यंत यत सूरय, बड़े बड़े विद्वान भी, बड़े बड़े सूरी देवता भी, दिग्गज बुद्धिमान भी, जिस वेद के तत्व को, रहस्य को नहीं जान पाते हैं, इतना सुंदर चारों वेद का ज्ञान एक सेकंड में दे दिया, ऐसा ब्रह्मा जी। उन्हीं ब्रह्मा जी के पुत्र हुए श्री अत्रि जी। वंश का वर्णन, अथात श्रूयताम राजन सोमह वंशस्य पावन, वंश सोमस्य पावन, सोमस्य पावनम वंश श्रूयताम राजन। आप सुनिए, जस्मिन वंशे, जिस वंश में पुण्य कीर्ते ऐलादयः भूपा कीर्तयन्ते, जिस वंश में बड़े बड़े ऐल इत्यादि महाराज पुरुरवा, इन्हीं चंद्रमा के पुत्र, आगे आप सुनेंगे, बुद्ध हुए और बुद्ध के पुत्र हुए पुरुरवा। पुरुरवा से जजाति महाराज, जजाति से जदु, और उसी जदु वंश में भगवान का अवतार हुआ है। अत्रि प्रकट हुए ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पास कोई तो पत्नी नहीं है, नहीं है ना? ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं, अत्रि का, वशिष्ठ का, सप्त ऋषियों का, या जितने भी ऋषियों का। तो हम लोगों के मन में एक प्रश्न आ सकता है, तो उनकी तो पत्नी नहीं है, तो सृष्टि कैसे कर रहे हैं, पुत्र कैसा कैसे प्रकट करते हैं? हम लोगों की धारणा है कि बिना पत्नी के पुत्र नहीं हो सकता है। ब्रह्मा जी के पुत्र है, परंतु बिना स्त्री के पुत्र है। जैसे ब्रह्मा जी बिना स्त्री के, बिना लक्ष्य के सहयोग के प्रकट हुए, उसी तरह से ब्रह्मा जी जब सर्वप्रथम सृष्टि किए, तो ब्रह्मा जी के मन में जो भाव आता था, उस भाव के अनुसार सामने एक पुत्र खड़ा होता था। शुद्ध भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए एक भाव प्रकट हुआ तो प्रथम पुत्र चार कुमार प्रकट हो गए, सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन। भगवान के चरणों का स्मरण किया तो भगवान ही आ गए। हृदय से स्मरण किया, श्री नारद जी का प्राकट्य हो गया, अत्रि का प्राकट्य हुआ, अत्रि जी प्रकट हुए। स्पष्ट है ब्रह्मा जी को सृष्टि, ब्रह्मा जी के जितने भी पुत्र हैं मरीचि इत्यादि, इनकी मां नहीं है, केवल पिता। बिना माता के प्रकट हुए हैं। तो इस तरह से अत्रि का जन्म हुआ। अत्रि जी, इनकी कथा तो बहुत लंबी चौड़ी है, भगवान के महान भक्त है और इनका आश्रम चित्रकूट में है। चित्रकूट माने भगवान श्री राम का वृंदावन। जैसे भगवान अपने गुप्त गुह्य लीलाएं मोस्ट कॉन्फिडेंशियल पास टाइम्स वृंदावन में किए, अपने सखियों के साथ, गोपियों के साथ, ब्रजवासियों के साथ, उसी तरह से अयोध्या में चूंकि एक मर्यादा थी तो भगवान ये सब श्रृंगार रस की लीला नहीं कर सकते थे, इसलिए उन सब लीलाओं को भगवान ने चित्रकूट में संपादित किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। अत्रि, तीन नहीं है जिसमें, उनको अत्रि कहते हैं। ये विश्व की सृष्टि तीन गुणों के द्वारा हुई है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और भगवान की भक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर है, त्रिगुणातीत। सत्वगुण से भी भक्ति नहीं होता है। हम सोच सकते हैं सात्विक व्यक्ति है तो भजन करेगा, सात्विक व्यक्ति है तो तीर्थ कर सकता है, व्रत कर सकता है, जाप कर सकता है, हवन कर सकता है, ये सब करेगा, दान कर सकता है, सात्विक है, परोपकार कर सकता है। परंतु भक्ति तो सत्वगुण से भी ऊपर की चीज है, शुद्ध शुद्ध सत्व में होता है। भगवान का नाम जो लेता है, ग्रहण करता है, जप करता है, कथा श्रवण करना, ये सब सात्विक चीज नहीं है, ये विशुद्ध सत्व, सत्वम विशुद्धम वसुदेव सद्दितम। भगवान स्वरूप कहता है, सत्व भी भगवान के स्वरूप में नहीं है, ये सत्व तो प्रकृति के जड़, प्रकृति के अंदर आता है और इन तीनों गुणों से परे भगवान का स्वभाव है, स्वरूप है। इसीलिए भगवान को पकड़ने के लिए ये सत्वगुण भी पर्याप्त नहीं है। तब त्रिगुणातीत अत्रि बनना पड़ेगा, तीनों गुणों से अतीत है ये भगवान के नाम का संकीर्तन, भगवान की लीला कथा, भगवान की भक्ति श्रवणम। ये सत्वगुण का काम नहीं है सुनना, ये अत्रि त्रि गुणों से, सत्वगुण से भी ऊपर का कार्य। प्रकृति के गुणों में जितना भी गुण है और उसके द्वारा प्राप्तव्य विषय है वो सब क्षणिक है, लेकिन यह जो भगवान की भक्ति है, कथा श्रवण आदि है, यह तो अमोघ है। यह किया हुआ कभी निष्फल नहीं होता है और इसका नाश नहीं होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि 5% भी यदि कोई भजन कर लिया इस जीवन में तो उस भक्ति का नाश नहीं होता है और उस भक्त का नाश नहीं होता है। लाभ क्या होगा? एक बार भी हे कृष्ण मैं आपका हूँ कह करके प्रणाम आपने कर दिया। सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मि, तव अस्मि, मैं आपका हूँ, एक बार आपने कहा और प्रणाम किया तो आपकी जिम्मेवारी खत्म। फ्री हो गए आप, स्वतंत्र। अब फिर उनका काम है 5%, 2% भी भक्ति हो गया, शास्त्र प्रमाण है। भगवान कहते हैं कि उस भक्त को तब तक मैं चांस देता हूं जब तक कि वो मेरे चरण कमलों को प्राप्त न कर ले। 2% करके भी आप भ्रष्ट योगी हो गए, दुसंग बस, पाप बस, आपकी भक्ति बंद भी हो गई तो अगला जन्म मनुष्य का होगा 100%। और कैसे घर में होगा? भगवान कहते हैं सुचि नाम श्रीमताम देह योग भ्रष्टो विजायत। पवित्र घर में होगा, जिस घर में अशुद्ध भोजन और संस्कार नहीं होगा, और श्रीमताम उसको दो रोटी खाने की चिंता भी करनी नहीं पड़ेगी। धनी घर में, धनी घर हो लेकिन अपवित्र हो तो भगवान की कृपा नहीं, परंतु पवित्र हो और धनी भी हो तो समझना चाहिए भगवान की कृपा। ये भ्रष्ट योगियों का घर है, इसमें भ्रष्ट योगी आएंगे। भक्त का घर हो और खाने पीने ओढ़ने पहनने की भी कोई चिंता न हो तो भक्त का योग भ्रष्ट अभिजायत है। और फिर भक्त के घर में होना, तो भगवान कहते हैं कि ये तो बिल्कुल महादुर्लभ, दुर्लभतम जन्म है। दुर्लभतर योगियों के कुल में जन्म लेना, उसका पुत्र बनना, वो तो अभी गर्भ में रहेगा तभी से भक्त भजन चालू कर देगा। वो महाराज जी कहते हैं कभी कभी बच्चा पेट में होता है और माँ भक्त है तो जाकर गिरिराज जी की परिक्रमा करती है, और गर्भ में बच्चा है अभी कोई ज्ञान नहीं है, उसी समय वह एक बार गिरिराज जी की परिक्रमा करने का अवसर मिल गया, उसको वृंदावन दर्शन का अवसर मिल गया। ये भक्त के कुल में प्रकट होने का, गर्भ से ही भजन चालू हो जाता है। और क्या कहा जाए, ठीक इसके उल्टे कुछ ऐसा कुल है, ऐसा परिवार है जिस परिवार में आप जन्म ले लिए तो अंडा और मांस बिल्कुल जिस दिन आप आए पेट में उसी दिन से आपको मिलना चालू है। भगवान कहते हैं जो मेरा भजन कर लिया उसको चांस देता हूं, 5% किया तो अगले जन्म में 6 से चालू करेगा, और 20 पूरा किया फिर उसको चांस दिया जाएगा, 21 से चालू करेगा, और इस तरह से तब तक चांस दिया जाएगा जब तक कि 100 न हो जाए। यह आश्वासन है शास्त्र, परंतु सही दिल से हृदय से एक बार हम चालू करें आपका हूं तवस्मि इति याचते, इस प्रकार से याचना करें, हे कृष्ण मैं आपका हूं। पता नहीं इधर किधर से ट्रैक बदलता है तो बदल ही जाता है। तो अत्रि पर बात हो रही थी, अत्रि त्रिगुण नहीं होना चाहिए। राजसिक और तामसिक सत्वगुण सहयोग करता है भजन में, लेकिन सत्वगुण के कारण भजन होता है ऐसा नहीं। तो अत्रि जी तीनों गुणों से ऊपर, त्रिगुणातीत, जिसके हृदय में प्रकृति के किसी भी गुण का स्थान न हो, सत्व से भी ऊपर हो, और यदि उसके जीवन में अनुसुईया जैसी पत्नी मिल जाए, अनुसुईया मतलब किसी के गुणों में दोष दृष्टि की बात तो दूर रही, किसी के दोष में भी दोष न दिखाई पड़े, इसको अनुसुईया। गुण में दोष देखे तब तो वो नीच व्यक्ति है, पापी है, अधम है। दोष है फिर भी दोष न देखे उसको अनुसूया कहते हैं। त्रिगुणातीत होने के बाद भी हृदय में एक वासना बनी रहती है, ये बुरा आदमी है, ये गलत है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा भगत है, भक्तों में भी ऐसा होता है। परंतु यह एक बहुत बड़ा दोष है हृदय का। किसी का दोष आप देखते रहोगे तो धीरे धीरे वो दोष आपके हृदय में आ जाएगा। उस समय तो लगता है अरे तो कितना छोटा आदमी है, कितना दोषी आदमी है, उसके दोष को देखते देखते वो दोष आप में आएगा। और राधा गोविंद महाराज और विचित्र बात कहते हैं कि तुम्हारे अंदर भी वो दोष है, इसलिए दोष दिखाई दे रहा है। आपको यदि पता ना हो कि चोरी क्या चीज है, कोई सामने चोरी भी करेगा तो पता नहीं चलेगा, लेकिन वो चोरी की प्रवृत्ति ज्ञान आपके हृदय में भी है, इसलिए पहचानते हो कि वो चोर है कि नहीं। तो आपके अंदर भी सूक्ष्म रूप से वो दोष है, इसलिए दूसरे में देख रहे हैं। तो एक तो ये अत्रित है और ऊपर से अनुसूया जैसे धर्म पत्नी प्राप्त हो गई। और बंधुओं यदि त्रिगुणातीत आत्मा हो और उसे दूसरे में दोष दर्शन न करने वाली बुद्धि प्राप्त हो जाए, पत्नी प्राप्त हो जाए, तब भगवान भी ऐसे भक्त का पुत्र बनने के लिए ललच उठते हैं। भगवान की भी लालसा बढ़ जाती है, मैं इसका पुत्र बनूं। और तपस्या कर रहे थे चित्रकूट में, एक भगवान विष्णु की आराधना कर रहे थे तो तीन आ गए, तीनों प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी ने अत्रि जी ने वहां भी पूछा ये त्रि तीन क्यों, एक को ही बुलाया था, एक की आराधना की थी, तो त्रि क्यों, अत्रि तीन नहीं बुलाया था, एक ही बुलाया था, एक ही आराधना किया था, एक का ध्यान किया था, तीन क्यों। तब वो तीनों त्रिदेव कहते हैं कि ऋषिवर, आप जैसे शुद्ध भक्त का पुत्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हो, आपने तो बुलाया एक ही, हम तीनों लगभग एक ही हैं, हम तीनों में कोई अंतर नहीं है, आपने भले बुलाया एक लेकिन हमारे तीनों के मन में लालसा हुई कि आप जैसे पिता का पुत्र बने। मुझे एक बात याद आती है, महाराज जी से किसी ने प्रश्न किया कि ये भगवान का अवतार भारतवर्ष में ही क्यों होता है, ये दूसरे बहुत सारे देश है, बहुत चीज है, तो वहां क्यों नहीं अवतार लेते हैं, ये राम का अवतार, कृष्ण का अवतार, बुद्ध का, और ये सब भारत में क्यों होता है। तो महाराज जी ने कहा है कि इसलिए भारत में होता है क्योंकि विदेशों में भगवान के माता पिता बनने लायक कोई भी नहीं है। भगवान ये किसी माता पिता के आश्रय से ही अवतार लेंगे तो वो देखते हैं कि सब भ्रष्ट थर्ड क्लास के लोग हैं, वो बाप बनाने लायक नहीं है, माँ बनाने लायक नहीं है, इसलिए भारतवर्ष जैसे पवित्र देश में ही अवतार लेते हैं भगवान। एक को बुलाया और तीन आए पुत्र बनने की लालसा, तीन पुत्र बने। उसका वर्णन इस श्लोक में प्रभुपाद जी लिखते हैं, ब्रह्मा जी के अंश से सोम चंद्रमा जिस वंश भगवान आ रहे हैं, सोम वंश में चंद्र वंश, और भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय जी आए, उनकी कथा एकादश स्कंद में है, और भगवान शिव के अंश से फूंक करके राख का पहाड़ लगाने वाले दुर्वासा जी आ गए, भयंकर देवता। अम्बरीश चरित्र देखिए, चाहे यदुवंश का विनाश देखिए, कहीं भी सेवा में थोड़ी त्रुटि हुई रात्रि को 12 बजे गरम ताजा खीर चाहिए तो चाहिए, मांगने के बाद एक मिनट भी लेट हो गया तो भस्म हो जाओ। अब बेचारे क्या करें, मालूम है कि ये ठीक नहीं है और अपने क्रोध को ठंडा करने के लिए दुर्वा खाते हैं। क्या खाते हैं? और कुछ नहीं खाते हैं, दूब जो घास होता है ना उसका आस मतलब भोजन करे, इसलिए उनका नाम दुर्वा था, दुर्व आसन करे। और बंधुओं, दुर्वा जो होता है बहुत ठंडा होता है। दिमाग किसी का गर्म हो, शरीर में गर्मी हो गई हो, आप उस घास को पीस करके पी जाइए, आपके शरीर में ठंडक आ जाएगी, इतना ठंडा चीज होता है। अब ये व्यास मंच से ये नहीं कहना चाहिए। मैं एक बार भोपाल में था किसी डॉक्टर के पास, एक व्यक्ति आया, डॉक्टर साहब हमको ये तकलीफ है, आप इलाज कर दीजिए। डॉक्टर ने कहा इसमें तो बहुत खर्च लगेगा। उसने कहा सरकार हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास कुछ है नहीं, पैसा कहाँ से खर्च करेंगे। तो डॉक्टर ने कहा तब यहाँ भोपाल में क्यों चले आए, तो गांव में कोई डॉक्टर नहीं मिला। बोले महाराज गांव के डॉक्टर ने कहा कि वहां जाइए, हमीदिया अस्पताल है, वहां जाइए आपका इलाज ठीक हो जाएगा। बोले यहाँ तो खर्चीला इलाज है, ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव है। बोले पैसा नहीं है मेरे पास, कुछ आप कृपा कीजिए। उसने कहा जाओ, एक पैसा की जरूरत नहीं है, प्रतिदिन 300 ग्राम दूब का घास पीस करके, हैं, मसाला वाला सील पर नहीं, फ्रेश पत्थर पर 300 ग्राम दूब पीस करके छान करके रोज पीना, स्वस्थ हो जाओगे, तुमको एक टैबलेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना ठंडा चीज दुर्वासा जी खाते हैं लेकिन फिर भी इतने गर्म रहते हैं। तो भगवान शिव के अवतार है, अंशा अवतार है। सोम प्रकट हुआ अत्रि के नेत्र से, और नेत्र से आंसू आया, आंसू से चंद्रमा। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात लिखते हैं, कहते हैं कि दो प्रकार के आंसू होते हैं, एक दुख के आंसू और एक सुख के आंसू। बंधुओं, आपके ही आंख से दोनों प्रकार के आंसू निकलती है। जब किसी के प्रेम में कोई जाने लगता है या कोई मिलता है तो भी आंख से आंसू छल छला जाते हैं, और वो आंसू जिधर भी जाता है ना वो ठंडा ठंडा आंसू होता है। लेकिन जब शोक होता है, दुख होता है, कोई कष्ट होता है, वो आंसू जब निकलता है तो बड़ा गर्म आंसू निकलता है। यहाँ पर भगवान के चरणों के ध्यान में, भक्ति में अत्रि जी आनंद के आंसू बहा रहे हैं, नयनम गलत अश्रु धाराया। और जैसे ही भगवान के ध्यान में वो अश्रु प्रवाहित कर रहे थे, अमृतमय चंद्रमा प्रकट हुआ, उसका वर्णन इस श्लोक में है। और इसीलिए अत्रि ऋषि के आनंद के आंसुओं से चंद्रमा प्रकट हुआ, इसीलिए सारे जगत को शीतलता और अमृत प्रदान करता है। तीन और विशेषता दी गई है, विप्र, औषधि और उदुगडाना। जितना भी यज्ञ होता है वो सब चंद्रमा की कृपा से होता है। जितने भी औषधि है, घास है, घास को गाय खाएगी, गाय के से दूध बनेगा, दूध से घी बनेगा, दही बनेगा, पंचगव्य बनेगा, यह सब गाय देती है। तो जितने भी ब्राह्मणों के यज्ञ और मंत्र के लिए वस्तु चाहिए वो सब गाय चंद्रमा देता है, और औषधि चाहिए वो चंद्रमा से मिलता है, और जितने भी नक्षत्र तारे हैं ये सब चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित होते हैं। चंद्रमा का प्रकाश इनमें है। और जितने भी औषधि हम लोग जो फल खाते हैं, दूध खाते हैं, सब्जी खाते हैं या भगवान को भोग लगता है, इन सब में जो टेस्ट है रस, आप खूब सुंदर पौधा लगाइए, सिंचाई कीजिए, सब चीज कीजिए, लेकिन चंद्रमा का प्रकाश यदि उस फल पर नहीं पड़ेगा तो उसमें रस नहीं होगा। कोई अनाज में रस नहीं, फल फूल में, दूध दही किसी में टेस्ट ही नहीं आएगा। इसलिए जितना भी रस वितरण करना है, अमृत वितरण करना है, अब भागवत में तो बहुत सारी चीज लिखे हैं, उसमें लिखा है कि जैसे दिन भर का तपा हुआ शरद ऋतु में घाम बहुत तेज होता है, और घाम से मुंबई वालों को इसका क्या अनुभव होगा, घाम से तपा हुआ व्यक्ति जब रात्रि में चंद्रमा का उदय होता है शरद काल में, तब चंद्रमा के अमृत किरणों से जब उसका पोषण होता है तो दिन भर का ताप भूल जाता है। कैसे जगत को अमृत प्रदान करता है, और इस पवित्र वंश में, सोम वंश में, चंद्रमा के वंश में आगे चल करके एक पुत्र की कथा आएगी और उसका नाम होगा बुद्ध, बुद्ध के पुत्र होंगे पुरुरवा, पुरुरवा एक अहलादय जिसमें लिखा अहल इत्यादि, स्वर्ग की अप्सरा आएगी और उनके साथ विवाह करेगी। बाद में गंधर्व लोग एक दूसरी स्त्री देंगे अग्निस्थली और उसका भी परित्याग करेंगे, कुरुक्षेत्र में जाकर उनको ज्ञान होगा और एक बहुत बड़ा वैराग्युक्ति वैराग्य होगा उनको। राजा होते हुए भी उन्हीं पुरुरवा के पुत्र होंगे जजाति, और जजाति महाराज के 5 पुत्र हुए जिनमें अनु, द्रुहियु, तुर्वसु, यदु और पुरु। इन 5 पुरु में जो जदु महाराज होंगे उन्हीं के वंश में भगवान अवतार लेंगे और जादव जदुवंशी कहलाएंगे। इसलिए इतना पवित्र वंश है, वंश सोमस्य पावनम, कि भगवान साक्षात ब्रह्म, भगवान स्वयं प्रकट होंगे, अवतार नहीं, स्वयं भगवान इस वंश में आ रहे हैं। इसलिए पवित्र वंश है। और अब यहीं पर विराम करता हूँ, आगे आप सबसे निवेदन है इस पवित्र वंश की कथा नित्यम भागवत सेवया, राधा गिरधारी के चरणों में जिस वंश में आए हैं उस वंश की कथा। संसार के लोग भी अपने वंश की कथा बड़ी प्रेम से सुनते हैं, हमारे बाप का नाम क्या, उनके बाप का नाम क्या, दादा का नाम क्या था, परदादा का नाम क्या। भगवान राधा गिरधारी को भी आनंद आएगा, प्रसन्न होंगे कि चलो कथा होते होते उस वंश की कथा जिसमें हम स्वयं आएंगे, तो ये बहुत प्रसन्नता विधायक वंश है। आप सब लोग आगे की हुई कथा और इस पवित्र वंश का वर्णन श्रवण करेंगे। मैं तो यहीं पर विराम करता हूँ, आप सबको धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, मुझे तो नहीं लगता है कोई जिज्ञासा नहीं है ना, है बोलो भाई। दोष देखना गुरु का और माता का लक्ष्य दोष देखना नहीं होता है, उस दोष को दूर करना ये लक्ष्य होता है। दोष देखने का अर्थ है जो केवल दोष देखना ही उसका काम है, समझते हैं ना। उसका काम है दोष देखना, और अधिक करेगा तो किसी दूसरे से कहेगा कि वो इतना बुरा है। लेकिन माँ जो देखती है कि इसके शरीर में कुछ गंदगी है, तो केवल देखती नहीं है, उसको फटाफट साफ करती है। गुरु दोष नहीं देखता, दोष देखने का अर्थ होता है ये दोष देखेगा तभी ना साफ करेगा। इस दोष देखना मुख्य नहीं है, उसको साफ करना मुख्य। तो जो गुरुजन होते हैं वो देखते हैं, तो ये दोष दर्शन नहीं है, तो कृपा है। दोष दर्शन का अर्थ होता है कोई जप कर रहा है, उस जप में भी दोष दृष्टि करना, अरे ये पेट पालने के लिए साधु बन गया है, निंदा करना, शिकायत करना। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब नवदीप में थे ना, उस समय लोग शिकायत किया करते थे, और खास करके चातुर्मासी के समय में ब्राह्मण लोग शिकायत करने गए थे काजी के पास में, निंदा करते थे लोग, क्या करेंगे, खाने का अन्न नहीं है, और जब पेट में अन्न नहीं है तो कहां से आएगी, रात भर हरे कृष्ण चिल्लाते रहते, नींद हराम हो गया है। कहीं कहीं तो ये कहते थे लोग, जाकर कहते थे सरकारी ऑफिसरों से, आप सबको पता नहीं है सरकार ये जितना भी महंगाई अत्याचार भ्रष्टाचार बढ़ा है ये हरे कृष्ण वालों के कारण है। काजी ने पूछा ये कैसे हो गया, ये हरे कृष्ण वालों के कारण कैसे हो गया, बोले सरकार ये सारा संसार जानता है कि हमारा ईश्वर चार महीना सोता है, हरि शयनी एकादशी होती है और फिर देवोत्थान होता है तब जगता है, और ये लोग इस चार महीने में बेचारा जब सोता है उसी समय मृदंग करताल लेकर चार बजे भोर में ही जग जाते हैं, और जब जग जाएंगे इतना बड़ा आदमी जगेगा डिस्टर्ब होगा नींद में तो क्या करेगा, कभी खूब बरसात करके बाढ़ से बहा देता है तो कभी वर्षा नहीं करता है, कभी ये करता है, और वर्षा नहीं होगी तो अनाज महंगा होगा, ये महंगाई इन लोगों के कारण है। और आज भी पैदा होते हैं आते हैं हरे कृष्ण में तो कहते हैं हम डालडा नहीं खाते शुद्ध घी खाते हैं, घी महंगा हो गया इनके चलते। दोष दर्शन पे, लेकिन दोष दर्शन नहीं करता है। महाराज जी एक उदाहरण देते हैं, जैसे कुछ लोगों का स्वभाव होता है दोष में भी गुण देखते हैं, जैसे कोई एक व्यक्ति राइफल लेकर आपके घर में आया और गोली बिल्कुल लोड है, केवल दबाने बाकी है, और आया आपके घर में और घर का सारा सामान उठाकर ले गया, ए जगना मत, आंख बंद किए रहो, सोए रहो, नहीं तो तुरंत मार डालूंगा, कहता है आप जगे होकर के भी आंख बंद करके सोए हो, और बेचारा सामान लिया चला गया। तो एक दोष दृष्टि वाला व्यक्ति होगा वो क्या कहेगा, बहुत बड़ा दुष्ट था, चोर था, पापी था, है ना, हम कितना मेहनत से चर्च गेट और कहां कहां जाकर कमा करके लाए थे, इतना मेहनत से और आकर के ले गया। लेकिन यदि गुणवान व्यक्ति होगा तो वो यही कहेगा, बाप रे बाप, हाथ में राइफल थी, गोली भी लोड था, सामान भर केवल ले गया, कम से कम गोली नहीं मारा, प्राण तो छोड़ दिया, कितना दया था, क्या कहा, कितनी कृपा थी उसकी, कम से कम मारा नहीं, मार सकता था, मारने का साधन भी था, तो दोष है उसमें, चोरी किया, डकैती किया, लेकिन दोष नहीं देखने की आदत है तो उसमें भी आदमी देखेगा कितना कृपालु था, उदार हृदय था बेचारा, हाथ में शस्त्र था, गोली थी, लेकिन फिर भी मारा नहीं। दोष दर्शन एक बहुत खतरनाक चीज है बंधु, खास करके भक्ति के क्षेत्र में निद्रा और निंदा, यह भक्ति का सबसे खतरनाक बाधा है। निद्रा पर विजय प्राप्त नहीं करेंगे तो भजन नहीं होगा, और निंदा पर विजय प्राप्त नहीं करेंगे तो जप नहीं होगा, इसलिए इन दो से बचना है और भगवान के चरणों में वैष्णव में आपस में प्रेम बढ़ाते हुए भगवान के चरणों को प्राप्त करना। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। ठीक है, हरे कृष्ण।